लेव व्यवस्था अध्याय 11। हम अपनी बाइबल में लेव व्यवस्था 11 अध्याय निकालें। इससे पहले कि हम लेव व्यवस्था अध्याय 11 पढ़ना आरंभ करें, हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के आरंभ के कुछ पदों को देखें, क्योंकि ऐसा न हो कि हम नियमों में इतना उलझ जाएं और सोचें, काश हम इसे शीघ्र आगे बढ़ जाते। क्या ये वास्तव में आवश्यक है? क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह के युग में नहीं जी रहे हैं? परंतु हमारे लिए जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर वास्तव में हमारे लिए आत्मिक नियम दे रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन और व्यवस्था के बारे में अध्याय 28 में स्पष्ट कर दिया था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1-8 पद। परमेश्वर ने हमें एक विशेष आत्मिक व्यवस्था दी है, यदि हम उसका पालन करेंगे तो आशीषें पाएंगे। यदि आप व्यवस्था विवरण का अध्याय 28 पूरा पढ़ ले तो आप जान लेंगे कि उससे विमुख होने का परिणाम क्या होगा। पद 15 में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज, और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। व्यवस्था विवरण 28:15-18 पद। और अनेक अन्य विपदाएं। यहोशू के अध्याय 1 में मूसा ने यहोशू को एक प्रकार से कार्यभार पूरा सौंप दिया था। पद 8 में वो कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अर्थात तू व्यवस्था का पालन करना, उसके अनुसार चलना, इस पर मनन करना, तो परमेश्वर तुझे समृद्धि प्रदान करेगा और तू सफलता पाएगा। भजन संहिता अध्याय 1 में दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। भजन संहिता 1:1-3 पद। कभी कभी व्यवस्था उकता देने वाली लगती है, परंतु ये जान लो कि यदि आप उस पर मनन करते और उसे पूरा करने का यत्न करते हो तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में पूरी होगी। इसराइल की संतान ने एक बड़ी गलती की, उन्होंने ये सोचा कि उनके पास व्यवस्था है, इसलिए वे व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के न्याय में उचित ठहरे। परंतु पौलुस कहता है कि व्यवस्था से नहीं, परंतु उसको पूरा करने से आशीष आती है। लेव व्यवस्था के अध्याय 11 में हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें वे सब भोजन वस्तुएं गिना रहा है जो हमें खाना है और जो हमें नहीं खाना है। मुझे लगता है कि परमेश्वर आपके स्वास्थ्य में रुचि रखता है। यदि आज परमेश्वर हमसे बात करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि फास्ट फूड के बारे में कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ होगा। वो आपकी भोजन में रुचि दिखाएगा, क्योंकि आप फास्ट फूड जैसे खाना खाकर परमेश्वर से हष्टपुष्ट शरीर की याचना नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे पौष्टिक आहार में रुचि रखता है, इसलिए जो भोजन वस्तुएं उसने हमारे खाने के लिए लिखी है वे अच्छी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं और बलदायक हैं। जिन वस्तुओं को परमेश्वर ने खाने के लिए वर्जित किया है उनके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण छिपे हैं। नया नियम में हम जानते हैं कि बाइबल कहती है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। पहला कुरिंथियों 10 अध्याय 23 पद। सब चीजें आवश्यक नहीं है। पत्रस ने आकाश से एक चादर उतरते देखी जिसमें शुद्ध और अशुद्ध सब प्रकार की चीजें थी, और प्रभु ने कहा उठ मार और खा। पत्रस ने कहा नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। प्रेरितों के काम 11:7-8 पद। बहुत से लोग कुछ भी खाने के लिए इस पद को परमेश्वर की ओर से हरी झंडी समझते हैं। मैं सुअर का व्यंजन खा सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैंने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। वास्तव में परमेश्वर इस वचन में सुअर के बारे में नहीं कह रहा है, वो अन्य जातियों के बारे में कह रहा था, और वो पत्रस से बात कर रहा था क्योंकि वो उसको अन्य जातियों में भेजने वाला था। तो भी मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस काफी उद्धार यहूदी था, और मुझे विश्वास है कि उसने सुअर और जो कुछ भी उसके सामने रखा जाता था खाया, क्योंकि उसने कहा सब चीजें धन्यवाद के साथ जो भी तुम्हारे सामने रखी जाए खाई जाए और कोई सवाल न किया जाए। फिर भी वो सुअर के बारे में नहीं था। ऐसा नहीं था, क्या ये मूर्ति पूजकों की बलि थी? यदि वे कहें हाँ थी, तब यदि तुम खाते हो तो तुम अपने विवेक को चोट पहुंचाते हो। तो भी यीशु ने कहा जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मती 15:11 पद। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि नए नियम में प्रभु ने हमें अन्य जातियों की तरह कोई भी मांस खाने की छूट दी है जिनको खाना यहूदियों को मना था। जब उन्होंने अन्य जातियों की व्यवस्था के चर्च से संबंध के बारे में व्यवहार करना चाहा, पत्रस ने कहा उन पर भारी जुआ मत रखो जिसको हमारे पितर और ना हम उठा सके। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक बात कही, गला घोटे या लहू के साथ मत खाना और मूर्तियों के सामने बलि की गई चीजें मत खाना। परंतु वो खाने की पूरी सूची में नहीं गया जिसे परमेश्वर ने लेव व्यवस्था में दिया है। जब हम लेव व्यवस्था के 11 अध्याय को देखते हैं, हम उन पशुओं को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने कहा हम खा सकते हैं, और उसने मूल नियम दिए। पशुओं में से जितने चिरे वो फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। अध्याय 11:3। फिर उन जानवरों का उदाहरण दिया गया जो नहीं खाए जा सकते क्योंकि वे तीनों चीजें पूरी नहीं करते। उनमें तीनों चीजें होनी चाहिए, चिरे हुए खुर, फटे हुए पांव और पागुर करने वाला। परंतु पागुर करने वाले वो फटे खुर वालों में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वो भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ले व्यवस्था 11:4-6 पद। मुझे किसी ने बताया, उनका एक मित्र था जो परमेश्वर और बाइबल पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो वचन जहां बाइबल खरगोश के बारे में कहती है वो जुगाली करने वाला है। उसने कहा, खरगोश पागुर नहीं करता। यदि बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है तो वो ऐसा नहीं कहती कि खरगोश पागुर करता है, जबकि खरगोश पागुर नहीं करता है। ये पशु इब्रानी में एरन बेत है, जिसे मैं नहीं जानता, परंतु किंग जेम्स के अनुवादकों ने सोचा कि शायद वो खरगोश होगा, परंतु वास्तव में वो कैसा जानवर था हम नहीं जानते। तो भी ये काफी रोचक है कि उन्होंने ढूंढ निकाला खरगोश पागुर करता है। अब वैज्ञानिक प्रमाण है कि खरगोश वास्तव में पागुर करता है, इसलिए उस मनुष्य ने व्यर्थ ही अपना विश्वास छोड़ दिया। ये वास्तव में कैसा दुख की बात है। सुअर खाना मना था, इससे जुड़ा स्वास्थ्य संकट शायद हम जानते हैं। जंगली खरगोश खाने से बुखार के साथ पीलिया होने का खतरा है, वे बीमारियों के वाहक हैं। यदि आप जंगली खरगोश खाओ तो सावधान रहना होगा। यदि हम सुअर खाते हैं तो ये मुख्य है कि हम उसे अच्छे से पकाएं। दुर्लभ सुअर के मांस के खाने से फीतानुमा कीड़े होने का खतरा है, इसलिए उसे इतना पकाने की जरूरत है कि सारे कीड़े मर जाएं, ताकि तुम अच्छी तरह मरे हुए कीड़े खाओ, अन्यथा कुछ जीवित रह जाएंगे। आप अपने को स्वास्थ्य के खतरे में डालते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें सुरक्षित करना चाहता था, ना कि उसे कैसे पकाएं या कि ठीक से पकाना सिखाएं। उसने इसे ना खाने की सूची में रखा है। फिर परमेश्वर ने उन चीजों के बारे में कहा जो पानी में रहती है। फिर उसने मूल नियम दिए और कुछ निर्देश दिए जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र, वो नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोटे होते हैं उन्हें खा सकते हो, और जलचारी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोटे के समुद्र वो नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित है। ले व्यवस्था 11:9-10। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसी मछलियां हैं जिन्हें खाना नहीं चाहिए, निश्चय ही केकड़ा, घोगा आदि भी। हम जानते हैं कि शंख जीव वर्ष के कुछ महीनों में विषधारी होती है, अतः परमेश्वर जलचारों के विषय में भी इसराइलियों को सुरक्षित रखना चाहता था। अब क्योंकि इन चीजों के बारे में हमने जान लिया है, हमें इन्हें खा सकते हैं। मेरा मतलब है, तुम इन्हें ले सकते हो क्योंकि तुम जान गए हो कि किस महीने में खाना चाहिए और किस महीने में नहीं खाना चाहिए। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोटे नहीं होते वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ले व्यवस्था 11:12। अब पक्षियों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें खाना मना था, जैसे उकाब, हर्टफोर्ड, कुर, शाही और चील, कग, शतुरमुर्ग, तकमास, जल कुकुट और बाज, हपसील, हाइगिल, उल्लू, राजहंस, घनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटहारी और चमगीदड़। मुझे कभी भी इन पक्षियों से कोई आपत्ति नहीं हुई है। मैं कभी भी इन्हें खाने की परीक्षा में नहीं पड़ा, इसलिए इस व्यवस्था के नियम से मुझे कभी भी सरोकार नहीं रहा। पर रेंगने वाले और पंख वाले, जो चार पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उन्हें तो खा सकते हो। ले व्यवस्था 11:21। इसका अर्थ है तुम टिड्डियां खा सकते हो और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला टिड्डियां और मधु खाता था। तुम फनगे और हरगोल खा सकते हो यदि तुम्हारी रुचि हो, परंतु अब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो चार पंख वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वो सांस तक अशुद्ध ठहरे। ले व्यवस्था 11:23-24 पर। इसी तरह परमेश्वर नियम बताता है जिससे तुम अशुद्ध हो जाते हो। इनकी लोथ छू लेने पर सांस तक अशुद्ध ठहरोगे और उसकी अशुद्धता से दूर होने के नियम, इसमें सुरक्षा के नियम है। धोना और मरे के लोथ छू लेने की अशुद्धता को दूर करना, ये स्वास्थ्य विज्ञान के नियम है जो परमेश्वर सिखा रहा है। पशुओं पक्षियों और सब जलचारी प्राणियों, ले व्यवस्था 11:46। यह रुचिकर है कि हर अध्याय के अंत में उसका निचोड़ दिया गया है। इसी प्रकार पद 46 में परमेश्वर ने क्या कहा है उसका वो सारांश दे रहा है, और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए। ले व्यवस्था 11:46-47 पर। मैंने यहां देखा है कि चूहा चिपकली घोंघा आदि को खाने का भी मनाई है, अतः आप पेटू लोग जो घोगे खाने का आनंद लेते हो जान लीजिए कि आप उसके बिना अधिक स्वस्थ रहेंगे।